ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज की मुरली हम सभी ने सुना, सभी को आज की मुरली याद होगी। तो आज बाबा ने क्या कहा? बाप समान रहम दिल बनो। बाप समान रहम दिल बनना अर्थात सबको दुखों से छुड़ाकर पतितों को पावन बनाना। तो बाप समान रहम दिल बनना अर्थात क्या? जैसे बाबा ने हमारे ऊपर रहम किया, ऐसे ही हमें भी सबके ऊपर रहम करना है। हमारे ऊपर बाबा की क्या रहम है? रहम है या नहीं? देखो, रोज बाबा हमें मुरली सुनाते हैं, उसके पहले आप देख लो, बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, समझ दी, माया के दलदल से निकाला, अज्ञान अंधकार में भटक रहे थे उससे निकाला, अपनी छत्र छाया में बिठाया। है कि नहीं उसका रहम? अभी आप सोचिए, यदि उसका रहम हमारे ऊपर नहीं होता तो आज हम कहां होते? कहां होते? किस हालत में होते? कैसी परिस्थिति में होते? तो कितना बड़ा उसका हमारे ऊपर रहम है। रोज अमृत वेले उठाता है, रोज मुरली सुनाता है, हर कर्म में साथ निभाता है ना उसका रहम? तो एक बार बाबा ने कहा, तुम्हें नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमें उठाता है, उठाता भी है, पढ़ाता भी है, खिलाता भी है, हर कर्म में साथ निभाता भी है, सुलाता भी है। तो बाबा ने कहा, अगर कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि भगवान आपके लिए फ्री बैठा है क्या, कि वो आपको उठाने भी आता है, पढ़ाने भी आता है, खिलाने भी आता है, वो आपके लिए है क्या? तो बाबा ने बड़े नशे की बात कही, क्या उत्तर देना उसको? अरे बहुत सुंदर, नशे से कहो कि इस समय भगवान हमारे लिए और फ्री नहीं, वो तो इंतजार करता रहता है, इंतजार करता रहता है कि मेरे बच्चे कब याद करें और मैं जाकर उनको मदद करूं, सहयोग करूं। तो उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा रहम है। तो बाबा यही चाहते हैं, बाबा ने हमारे ऊपर रहम किया, हमारे ऊपर विश्वास रखा, हमारे ऊपर आस रखा। आप सोचिए इस बात की आप गहराई में जाएंगे, संसार की करोड़ों आत्माओं में से भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, उसने हमें सत्य ज्ञान दिया, समझ दिया। किस लिए दिया? किस लिए दिया? किस लिए दिया? बहुत सुंदर, उत्तर देने में उसे आ रहे हैं आप सब। दूसरों को देने के लिए दिया है। ऐसे नहीं हमें तो ज्ञान मिल गया और दूसरे क्या अपने से लेना देना, सबको बांटने के लिए दिया है। ऐसे नहीं आराम से हम सोने के लिए नहीं दिया है। तो भगवान ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, आस रखी है, तो उसके आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं ना हम। विश्वास रखा है कि यही मेरे बच्चे मेरे कार्य में मददगार बनेंगे, यही मेरे बच्चे स्वर्ग की स्थापना में मेरे राइट हैंड हैं, उसने हम पर विश्वास किया है। तो बाबा समान रहम दिल बनना। लेकिन रहम दिल बनने के लिए कौन बन सकता है? सबके ऊपर कौन रहम कर सकता है? कौन कर सकता है? बहुत सुंदर उत्तर दिया, जो स्वयं पर रहम करना जानता है। अगर हमें स्वयं पर रहम करना नहीं आता तो हम दूसरों के ऊपर क्या करेंगे। और स्वयं पर रहम करना माना, स्वयं पर रहम करना माना अच्छे से पढ़ाई पढ़ना, जो बाबा की श्रीमत मर्यादाएं हैं उन श्रीमत मर्यादाओं में एक्यूरेट रहना। अगर हम श्रीमत मर्यादा पर नहीं चलते हैं, मनमत पर चलते, मनमत परमत जनमत, हाँ, भूले करते हैं, अवज्ञाएं करते हैं, तो हम अपने ऊपर रहम करते हैं। फिर अपने ऊपर रहम करना अर्थात स्वचिंतन करना, स्वदर्शन करना, स्वपरिवर्तन करना, अपने ऊपर रहम करना अर्थात अपने समय श्वास संकल्प को पूरी तरह से सफल करना, अपने ऊपर रहम करना अर्थात व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त रहना। और व्यर्थ का कारण भी क्या है, व्यर्थ देखना सुनना बोलना। और यदि हम चाहते हैं हम अपने ऊपर रहम दिल बने, व्यर्थ से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसका आधार है समर्थ संकल्प। समर्थ संकल्पों का स्टॉक अपने अंदर जमा करें। और समर्थ संकल्पों का स्टॉक जमा करने का आधार है, अरे वाह, हमें तो बताने नहीं पड़ता सारा। बहुत सुंदर, बुद्धि की लाइन आपकी बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि आपकी दीदी आशा दीदी है ना, इसलिए जरूर। तो समर्थ का आधार मुरली। तो मुरली का जितना हम मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, उतना हमारे अंदर समर्थ का स्टॉक जमा होता है। और जितना हम अपने आप को व्यर्थ से मुक्त करके समर्थ का स्टॉक जमा करते हैं, उतना समझो हम अपने ऊपर रहम कर रहे हैं। और जो अपने ऊपर रहम कर रहा है, फिर वही दूसरों के ऊपर रहम कर सकता है। तो रोज की मुरली, अगर हम पूछें आप रोज की मुरली सुनते हैं, तो सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। सुनने का मतलब क्या है, क्या, अरे वाह, बहुत बढ़िया। कई बार देखो साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं, माताएं हैं कई बार बोलते हैं मेरा बेटा है ना बिल्कुल सुनता ही नहीं, कितना भी कहो कितना भी बोलो सुनता ही नहीं है। आप बोल रहे हैं बेटा तो सुन रहा है, उसका कान बंद थोड़ी है, फिर भी माता बोलती है मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं। कब बोला, कब बोला, जब उसने किया नहीं। तो बाबा की मुरली हमने सुनी और किया नहीं तो अब आप अपनी ईमानदारी से पूछो, क्या हमने मुरली सुनी, सुनी। अब हम नहीं पूछेंगे सुना या नहीं सुना, आप अपने आप से पूछना, क्या मैं रोज मुरली सुनता हूं, अर्थात जो बाबा ने कहा वो करता हूं। चार्ट में तो हम भर देंगे मुरली सुनी, हां सुनी। अब चार्ट में तब लिखना है सुनी जब, जब किया तब। अच्छा, करेंगे भी तब जब मुरली की पॉइंट याद रहेगी। कई बार अचानक हम मुरली सुना है सुबह, अचानक किसी ने पूछा आज का वरदान क्या है, और उसी समय क्या हाल होता है, अंदर में रहता है और बाहर, फिर उसको कहते हैं थोड़ी सी हिंट दे दो, एक अक्षर बता दो, और वो एक अक्षर बताता है फटाफट। तो ऐसा क्यों, क्यों हम, क्योंकि हम मुरली अंदर में रिवाइज नहीं करते, सुन तो लेते हैं उसका हम चिंतन नहीं करते। तो आप चाहते हैं कोई अचानक कभी भी कोई पूछे और हम फटाक से उत्तर दे दे, चाहते हैं, जो चाहते हैं हाथ खड़ा करें। बहुत सुंदर, उसकी विधि बताता हूं। कोई भी आपको पूछेगा, कभी भी पूछेगा, आप तुरंत उत्तर देंगे। तो ये विधि हमने सुना दादियों से। दादी कहती थी, सुनाती थी कि जो हम मुरली लिखते थे, हम किस प्रकार मुरली लिखते थे। दादी ने सुनाया एक बार कि हम मुरली में चार सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो कहा मैं उन चार सब्जेक्ट की चार डायरी ही बना लिए थे, ज्ञान की पॉइंट ज्ञान वाले डायरी में, योग की पॉइंट योग की डायरी में, और धारणा की पॉइंट धारणा वाली, और सेवा की पॉइंट सेवा वाली। तो ये इस बात से प्रेरणा लेते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने बनाया। मैंने तो चार डायरी नहीं रखा, एक ही डायरी में, कि आज की मुरली से स्व उन्नति के लिए सात सूत्र। क्या होता है, आपकी दीदी मीठे बच्चे सुनाया और आपने लिख लिया, धारणा वरदान सुनाया लिख लिया, वो भी अच्छी बात है, ना लिखने से तो लिखना अच्छी बात है, लेकिन हम भी तो कुछ मेहनत करके हम भी तो निकालें मुरली की पॉइंट बीच से, है ना। तो सात बातें आपको सुनाएंगे और आपको रोज की मुरली से लिखना, देखना आपको मुरली की पॉइंट भूलेगी नहीं, क्योंकि आपने खुद मेहनत करके है ना वो पॉइंट निकाला है, ध्यान पूर्वक आपने मुरली सुना है तब वो पॉइंट निकली है, है ना। ऐसे तो नहीं निकलेगी, ध्यान पूर्वक सुनेंगे पूरी एकाग्रता के साथ सुनेंगे तो वो पॉइंट निकलेगी, और जब हमने एकाग्रता पूर्वक सुना है तो वो पॉइंट भूलेगी नहीं। तो पहला, आज की मुरली से स्वमान, और ये भी ध्यान रखना बातें तो बहुत सारी निकलेगी, स्वमान निकालोगे मुरली से तो 100 बातें निकलेगी, 100 स्वमान, तो उसमें हमें नहीं जाना है, एक ही लिखना है, ठीक है ना। कितना लिखना, एक, और जो लिखना उसी पर सारा दिन उसमें स्थित रहना। तो हमारे लिखने का मतलब ये है कि उसमें हमें सारा दिन उस स्वरूप में स्थित रहना, ऐसा नहीं लिख करके डायरी रख देना है। तो पहला, आज की मुरली से स्वमान, सारा दिन उसी स्वमान के अभ्यास में रहना है। दूसरा सूत्र, आज की मुरली से योगाभ्यास, योग के संदर्भ में बाबा ने क्या कहा। बहुत सारी बातें निकलेगी योग की भी, लेकिन एक ही लिखना है और वही सारा दिन हमें योग, हाँ, चलते फिरते उठते बैठते वही प्रैक्टिस करनी है। तीसरा, आज की मुरली से धारणा, तो धारणा में भी एक ही लिखना है, लेकिन व्रत ले लेना है कि आज बाबा ने जो कहा है वो हमें करना ही है। और चौथा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है आज की मुरली से चिंतन, एक पॉइंट लेकर के उसके ऊपर चिंतन करना। चिंतन करने से इतना आपको सुख मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा, इतनी ज्ञान की गहराई आ जाएगी, आपको ज्ञान सुनाने की इच्छा करेगी, योग बहुत अच्छा लग जाएगा, व्यर्थ से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। चिंतन, कई बार हम कहते हैं वो तो अच्छी बात है लेकिन मेरा चिंतन चलता नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसका चिंतन ना चलता हो, हाँ चलता है ना सबका। अगर कोई आपको बोल दे पागल कहीं का तो चिंतन चलेगा नहीं उसका तो हम कितना चिंतन, चार लोगों के, हाँ कितना चिंतन, चार लोगों के बीच में इसने पागल मुझे बोला, अच्छा इसने क्या समझा है, मैं भी मौका देखता हूँ तो कितना अच्छा उसका, उस दिन नहीं महीनों बीत जाएगा सालों बीत जाएगा, लेकिन उसको देखते ही क्या याद आएगा, आज भी मुझे याद है, क्या याद है चार लोगों के बीच में इसी ने मुझे पागल बोला था। और हमें 400 लोगों के बीच में बाबा बोल रहे हैं, तुम मेरे नैनों के नूर हो, दिल तख्त नसीन हो, हम उसको रिवाइज भी कर रहे हैं फिर भी कोई पूछ रहा है। तो अब सोचिए, जो अंदर हमारे अंदर जानी चाहिए वो बाहर जा रहा है, और जो बाहर निकलनी चाहिए था वो, तो कितनी सफाई की जरूरत है, वो सफाई होगी मुरली चिंतन से। कितनी पॉइंट हुई, चार। पांचवी बात, आज की मुरली से सेवा, सेवा के संदर्भ में बाबा ने क्या कहा, है ना। कई बार बाबा कहते हैं सेवा की नई नई युक्तियां निकालो, है ना, प्लान बनाओ, और हमारा बुद्धि चलता ही नहीं, तो बाबा खुद ही बताते हैं किस किस प्रकार से सेवा करो, क्या क्या विधि बताते हैं बाबा सेवा के लिए, कहाँ कहाँ जाओ सेवा करने के लिए। अरे वाह, बिल्कुल आपने तो रट के रखा है अंदर में, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो कभी शिव बाबा कहते शिव के मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, मेरे भक्तों को ज्ञान दो, बैज के ऊपर सेवा करो, ट्रेन में सेवा करो, प्लेन से पर्चे गिराओ, बड़े बड़े होर्डिंग लगाओ, है ना। नई नई विधियां बाबा बताते हैं ना, कहाँ जाओ, अच्छा मेले में जाओ, कुंभ में जाओ, बहुत सारी विधियां, चलते फिरते उठते बैठते सेवा करो, बाबा से कंबाइंड रह करके सेवा करो। तो आज देखो कि आज बाबा ने सेवा के संदर्भ में क्या कहा और क्या मैं वो कर रहा हूं। छठी बात स्मृति, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्मृतियां रोज बाबा कुछ याद दिलाते हैं, है ना, कि बच्चे तुम्हें अब घर जाना है, बच्चे तुम देवता बनने वाली आत्मा हो, बच्चे तुम विजयी रतन आत्मा हो, बाबा हमें याद दिला रहे हैं। तो सोचो आज की मुरली में बाबा ने हमें क्या याद दिलाया, वो नोट करो, क्या फायदा होगा इससे। जितना हमारे आप एक मास ऐसा करके देखो, रिजल्ट देखना, आपके अंदर समर्थ स्मृतियां अंदर में भर जाएगी और जो पुरानी व्यर्थ स्मृतियां हैं वो डिलीट हो जाएगी। हाँ, हम कई बार बोलते हैं ना, कोई घटना याद आती है, हम परेशान भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, उसको भुलाना चाहते भी हैं, फिर भी नहीं भूल रहा है, वही बार बार याद आ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, तो ये क्यों? क्योंकि समर्थ स्मृतियां नहीं है, श्रेष्ठ स्मृतियां नहीं है। इसलिए बाबा कहते रोज अमृत वेले श्रेष्ठ स्मृतियों का तिलक लगाओ, ठीक है ना। तो रोज की मुरली से क्या निकालना, स्मृति। सातवीं बात, आज की मुरली से स्व चेकिंग, है ना, चार्ट बनाना। क्योंकि बाबा हमेशा कहते बच्चे चार्ट स्व उन्नति का साधन है, हाँ। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा अमृत वेले उठे, हाँ उठे, मुरली सुनी, हाँ सुनी, भोजन पर योग युक्त रहे, शाम का योग किया, अब तीन चार दिन वही हमारा एक जैसा रिपीट हुआ, तो डायरी एक तरफ, वही तो बात रोज लिखना है, हाँ ना हाँ ना। अगर आप ये छह बातों को चार्ट के तरीके से, तो आपका रोज नए तरीके से चार्ट हो जाएगा, तो लिखने को मन करेगा, ठीक है ना। मुझे याद आ रहा है कि आप सभी को याद होगा, जब बाप दादा आते थे तो दो तीन मुरलियों में करीब बाबा ने एक बात, एक महावाक्य उच्चारण किया कि जो बच्चे रोज रात में सोने के पहले सारे दिन का समाचार बाबा को सुनाकर सोते हैं, क्या फायदा बताया होगा, बताइए किसने बोला, जरा हाथ खड़ा करें। अरे वाह, बिल्कुल एक्यूरेट बोला। बहुत होशियार हैं आप सब, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बढ़िया उत्तर, बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो बाबा ने यही कहा था कि वे बच्चे धर्म राजपुरी के सजाओं से मुक्त हो जाएंगे, जिनका रोज का नियम है। तो ये तो बाबा ने बहुत बड़ी बात बोल दी। तो एक टीचर बहन ने गुलजार दादी से प्रश्न पूछा, दादी क्या ये सचमुच ऐसा है, बाबा को सुनाने से और इतनी बड़ी प्राप्ति कि धर्म राजपुरी के सजा से मुक्त, सारे हिसाब किताब हमारे फिनिश, क्या सचमुच ऐसा है। तो दादी ने उसका बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया। दादी ने कहा बाबा को सुनाने का मतलब है अंदर से रिलाइज करते हुए बाबा को सुनाना, ऐसे नहीं कि रोज ही गलती करते रहो और बाबा हमसे हो गई माफ कर देना, वही गलती रोज ही रिपीट होती रहे, ये नहीं। है ना, बाबा को जब सुनाए बाबा ये मेरे से नहीं होनी चाहिए था, हो गया है, मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ, आज से मेरे से ये नहीं होगा, तब बाबा से शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। है क्यों कहता, अभी कल भी बाबा ने कहा था बाबा को सच सच सुनाना है, क्यों कहता है बाबा सच सच सुनाओ, आधा माफ होता है क्या? एक बार बाबा ने मुरली में कहा माफ तो नहीं होता है, हाँ सच सुनाने से बाबा से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, फिर वो गलती होगी नहीं, हल्कापन अनुभव होगा, खुशी होगी, आपका योग लगेगा, मन जो भारी भारी है वो नहीं होगा, आगे से वो गलती रिपीट नहीं होगी, आदि आदि। हाँ देखिए, आपका बच्चा है, आप गलती करता है और आपको सच सच सुना देता है, तो आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, आपको स्नेह आता है ना, कि आप इतना ही बोलेंगे अच्छा ठीक है आगे से नहीं करना, और आपको खुशी होती कि मेरा बच्चे, मेरे बच्चे ने सच बोला, और आपका बच्चा गलती किया और आप आपसे झूठ बोलता है कि मैंने नहीं की, जिद करता है, तो आप क्या करेंगे, बस सीधा ही तो उसको दो थप्पड़ लगाएंगे, एक तो गलती कर रहा है और झूठ भी बोल रहा है, ऐसे करेंगे ना, लेकिन बाबा तो ये नहीं करता, लेकिन हम अपने आप को ही सजा दे देते हैं। तो ये है, ये इस प्रकार से आप चार्ट लिखेंगे तो रोज आपका चार्ट लिखना भी हो जाएगा, आपको रोज की मुरली की पॉइंट याद रहेगी, बाबा जो कहते हैं वो आपके स्वरूप से दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है ना। सात बातें याद रहेगी, पहला क्या था, स्वमान, दूसरा योगाभ्यास, तीसरा धारणा, चौथा पांचवा, छठा और सातवां, अरे वाह गुड, बहुत सुंदर। तो ये है स्वयं के ऊपर रहम दिल बनना, और ऐसे रहम दिल बच्चे ही सबके ऊपर रहम करते हैं। और प्रश्न में बाबा ने क्या कहा, सारी दुनिया की आत्माएं हाँ क्या चाहती हैं, सुख और शांत, कौन दे सकता है, हाँ बाबा के सिवाय, और सारी दुनिया की आत्माएं शांति और सुख चाहती हैं, और ये काम जो है कौन करता है, बाबा, और बाबा के साथ में हम बच्चे भी, जो बाबा का कर, ऐसे नहीं वो बाबा का कार है हमारा नहीं जो बाबा का कार वही हमारा कार। तो शांति और सुख, कब शांति लोगों को मिलेगी हमारे द्वारा, बाबा के महावाक्य, तुम्हारे द्वारा शांति के वाइब्रेशंस कब फैलेंगे, बाबा ने एक महावाक्य कहा था, जब तुम अशरीरी बनने का अभ्यास करते हो तो तुम्हारे द्वारा शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं, जब तुम स्वदर्शन चक्र घुमाते हो तो तुम्हारे द्वारा सुख के वाइब्रेशंस फैलते हैं। एक मिनट के लिए हम स्थित हो जाते हैं, बाबा ने आज कहा है तो कर लेते हैं, चलो अपने आप को देखो, मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई मणि, बहुत तेजोमय सितारा, अशरीरी आत्मा, शरीर से अलग, बहुत तेजस्वी आत्मा, मुझसे चारों ओर तेज प्रकाश फैल रहा है, फील करेंगे मैं बहुत बहुत शांत हूं, मेरा चित्त पूरी तरह से शांत हो गया है,
मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं शांति धाम की रहवासी हूं। शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है। शांति के सागर बाबा के सम्मुख मुझ पर शांति की बरसात हो रही है। मैं गहन शांति का अनुभव कर रहा हूं। मैं बहुत बहुत शक्तिशाली आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस निरंतर मुझ में समा रहे हैं। जो शक्तियां शिव बाबा में वही मुझ में। सर्व शक्तियों की मुझ पर बरसात हो रही है। मुझसे चारों ओर अनंत शक्तियां फैल रही हैं। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, बाप बेहद का है इसलिए उसे एक फुरना है। क्या क्या फुरना रहता है बाबा को? हाँ, कि है ना, कैसे सब बच्चे है ना दुख से सुखी बने, दुखी से सुखी बने। हर माँ बाप को ये रहता ना चिंता कि हमारे बच्चे कैसे सुखी रहें। ऐसे बाबा भी कह रहा, बाबा ने कहा ना, ये सारी दुनिया हमारी है, चाहे वो नई हो या पुरानी, और सारे ही बच्चे हमारे हैं। तो बाबा की यही भावना रहती है कि हमारे बच्चे कैसे सभी सुखी बने। मैं सारी दुनिया का ही मालिक हूँ, विश्व का मालिक हूँ, मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मेरे सारे बच्चे पावन बन जाएं, मेरे सारे बच्चे सुखी बन जाएं। तो बाबा हमसे यही चाहता है। तो हमारा भी तो यही कर्तव्य है, सबको सुख का रास्ता बताना, सबको बाबा का परिचय देना। अव्यक्त मुरली, पिछला अव्यक्त मुरली याद होगा, बाबा ने कहा और सेवा तो हर कोई कर सकता है, स्थूल सेवा, लेकिन कौन सी सेवा आप ही कर सकते हैं? मनसा सेवा, प्योर वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा, सुख शांति हाँ देने की सेवा। ये हम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा कि मुझे दुखी अशांत आत्माओं की आवाज सुनाई पड़ती है। तो बाबा क्या करता होगा उस समय? बाबा को दुखी अशांत आत्माओं को आवाज सुनाई पड़ता है, तो बाबा क्या करता है? डेढ़ बजे जागता है वो। अच्छा, और क्या करता है? क्या करता है? आपको याद करता है? नहीं, ठीक बोल रहे हैं। मत तो ज्ञान का कलश बाबा ने आपके ऊपर ऐसे ही नहीं रखा है। बहुत अच्छा। तो बाबा ने यही कहा था कि मैं उस समय तुम बच्चों को याद करता हूं,
कि जो बच्चे वहीं पर हैं हमें परमधाम में सुनाई पड़ता है और हमारे बच्चे को वहीं नहीं सुनाई पड़ रहा है, तो बाबा कहते बच्चे दुखी अशांत आत्माओं की आवाज सुनो और उन्हें सकास दो। आत्माओं को सकास दो, कौन दे सकेंगे सकास? मनसा सकास कैसे दे सकेंगे, कौन दे सकेंगे? जिनके अंदर सुख शांति का, अगर हमारे अंदर दुख अशांति का होगा इष्टाग तो वही फैलेगा, गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो इसलिए जितना हम शांति के सागर, सुख के सागर से कंबाइंड रहेंगे, जितना हम अपने अंदर भरेंगे उतना हम दूसरों को भी दे सकेंगे, तो ठीक है ना? उससे लेना है और सबको, बाकी किसी और से लेने की इच्छा नहीं करनी है। जो सागर है उससे स्वयं को है ना कंबाइंड रख करके सारे विश्व को। हम तो एक अभ्यास में आपको बताऊं, बहुत सुंदर मुझे जो लगता है मैं करता हूं कि सारा दिन बाबा कहता है ना मनसा सकास दो, तो आप एक नियम बनाओ सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते। जब हम चल रहे हैं तो फरिश्ता बन करके चलेंगे, जब भी चलेंगे तो बाबा की छत्र छाया में चलेंगे, सकास फैलाते हुए चलेंगे। जब भी हम किसी को देखेंगे हमारी दृष्टि पड़ेगी, हमारी दृष्टि से शांति के वाइब्रेशंस, दूसरा कोई आया सुख के वाइब्रेशंस, तीसरा कोई आया शक्ति के वाइब्रेशंस, दूसरा कोई और आया पवित्रता। आप ये नियम बना लो, बाबा ने ये होली के ऊपर अव्यक्त मुरली चली थी, आपकी दृष्टि बन जाए पिचकारी, जैसे होली पर कोई भी सामने आता है हम क्या करते हैं, कोई भी बाकी ना जाए मार देते हैं उसको पिचकारी। तो बाबा ने कहा आपकी दृष्टि पिचकारी बन जाए और कोई भी आवे आपकी दृष्टि पड़े तो खाली नहीं जाए, कोई ना कोई गुणों का शक्तियों का सकास दो, और कोई नहीं है तो बाबा से लो, है ना? कितनी सुंदर बात, कोई नहीं है तो बाबा से लेना है और आया तो देना है। अच्छा, और आगे बाबा ने क्या कहा आज की मुरली में, लोगों से क्या पूछो, तुम नरकवासी हो या आप कौन से वासी हैं, आप बताइए, संगम वासी, आप नरक से निकल आए हैं दुख धाम से, कभी कभी मन बुद्धि से चक्कर लगाने तो नहीं जाते, सदा ही बाहर रहते हैं? अरे अभी 2500 साल से उस दुनिया में रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना? तो बाबा ने कहा तुम स्वर्गवासी, मना स्वर्ग में जाना है तो अभी आपको नरक से बुद्धि हटा लेनी है, और आप निकल ही आए हैं लेकिन कभी कभी हो जाता है, लेकिन जाना नहीं है, मन बुद्धि से भी नहीं जाना है। और बाबा ने कहा जो हाँ लोग क्या कहते हैं, कोई मरता तो क्या कहते हैं, स्वर्ग पधारा, तो जरूर पहले कहाँ था? मुझे याद है कि यहाँ पर दो भाई आए थे, कोई गेस्ट का प्रोग्राम चल रहा था, तो एक साथी था अपने साथी के घर में फोन करता है कि आपका लड़का ना स्वर्ग में वास कर रहा है, ऐसे। तो उन्होंने स्वर्ग और वास शब्द सुन लिया, मैं शब्द नहीं सुना उसके परिवार वालों ने, उसके परिवार वालों रोना चाहे, दो दिन पहले तो ठीक ठाक होकर गया था क्या हो गया, जाते ही रोने लगे, क्या तबीयत खराब हुई क्या हुआ? तो कहते नहीं मैं ये बोल रहा हूँ स्वर्ग में आ गए हैं, स्वर्ग जैसे स्थान है। तो घर वाले नहीं 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 तुम हमें खुश करने के लिए बोल रहे हो, आप सच सच बोलो। अरे कहा भाई हम सच सच बोल रहे हैं, तो कहा हम आपके लड़के से ही बात करा देते हैं। वो लड़का आया, फिर वो फोन बात किया, अरे मम्मी मैं जिंदा हूँ मरा नहीं मैं स्वर्ग जैसी जगह पर पहुंच गया हूँ। तो ऐसा भी है ना, तो स्वर्ग है ना जरूर, हाँ पहले वो नरक में था, लेकिन अगर उनको ये कहो तो मानेंगे नहीं। और क्या कहा आज बाबा ने, हाँ तुम्हारा सबसे बड़ा पुराना दुश्मन रावण है। और बाबा ने कहा जो बात तुम्हारे काम की नहीं है उसे हाँ, उससे कान हियर नो इविल। तो मुझे याद आ रहा है एक बार बड़ी दादी, हम मधुबन निवासियों की भट्टी चल रही थी और बड़ी दादी आई, कहा अच्छा ये बताओ, जैसे आपके सामने कोई आता है और वो व्यर्थ सुनाता है, आपसे सीनियर है, आपको वहां रहना ही पड़ता है, तो आप क्या करेंगे बताइए, उत्तर दीजिए। आपको वहीं रहना पड़ता है, वहीं आपकी ड्यूटी है, और वो आपको सुनाता है, फिर आप क्या करेंगे? हाँ, अच्छा ठीक है। तो हम जो आपने उत्तर दिया, यही हम लोगों ने भी, दादी एक कान से सुन करके दूसरे कान निकाल देना है। तो दादी ने कहा नहीं, अगर दूसरे से निकालोगे तो यहां माइंड है बीच में, चिंतन चल जाएगा। तो दादी ने बड़ा सुंदर बताया कि जिस कान से सुनो उसी से बाहर निकालो। होता क्या है, हम हां में हां मिलाते हैं ना, तो उसको और सुनने में, सुनाने में रुचि आती है। हाँ, जिसको बाबा कहते हैं माया आती है, लेकिन बच्चे उसको और चाय पानी पिला देते हैं। चाय पानी पिलाना माना हां में हां मिलाना। अब जब भी उसके पास व्यर्थ बातों का स्टॉक जमा होगा तो कहां जाएगा? आपके पास आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने एक बार सुन लिया है। व्यर्थ बातें माना, व्यर्थ बातों को क्या बोलते हैं? किचड़ा। किचड़ा कहां डाला जाता है? वो आया इधर उधर की बातें इकट्ठा हुआ हमारे ऊपर डाला, तो हम क्या बन गए? बाबा क्या बनाने आए हैं? बाबा बनाने आए हैं हीरे का, हीरा। और हम क्या बन जाते हैं? सोचने की बात है ना। तो क्या करना है, अगर आप देख रहे हो कोई आ रहा है, आप जानते हो ये हमें कुछ सुनाएगा, हमारा समय बर्बाद करेगा, तो आते ही आप ही उससे पूछ लेना, आज का वरदान क्या था? है ना, युक्ति रचनी चाहिए ना। और अगर उसको ना आवे याद, तो आप ही सुनाना चालू कर दो। हाँ, तो फिर दोबारा आपसे नहीं सुनाने आएगा। माना कोई ना कोई युक्ति रच करके अपने आप को। अच्छा, आगे फिर धारणा सार में बाबा ने क्या कहा? देखो बाबा आज बार बार पक्का करा रहे हैं कि भूल ना जाए बच्चे। फिर बाबा ने पक्का कराया, बाप समान रहम दिल बनना है ना। सब जिसे बाबा, देखो कितनी हम दादियों की कहानी सुनते हैं, एक कितनी प्रेरक एक कहानी मैं आपको सुनाऊं कि कैसे बाबा रहम दिल मनना, बनना माना उपकार की भावना, परोपकार की भावना, सबका कल्याण हो। रहम दिल बनना माना सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कोई कैसा भी हो। बाबा के महावाक्य, यदि आपके अंदर शुभ भावना, शुभ कामना है, रहम की भावना है, कल्याण की भावना है, तो कोई कैसा भी हो उसको बदलना ही है। बाबा ने कहा रावण जैसा व्यक्ति होगा तो वो भी परिवर्तन हो जाएगा। आपके शुभ भावना में इतनी ताकत है, वो भी आपके आगे झुकेगा। लेकिन होता क्या है, कई बार हम ये कहते हैं हम तो शुभ भावना रखते रखते थक गए, ये ऐसा पत्थर बुद्धि है कि हमारी भावना का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता ही नहीं है। जैसे ही हम ये सोचते हैं वैसे ही हमने दीवार खड़ी कर दी। वो बदलने को तो आता है, माफी मांगने को आता है, लेकिन जैसे हम ये सोचा ये पत्थर बुद्धि है, हमारी शुभ भावना का प्रभाव पड़ ही नहीं रहा, वो दूर चला जाता है। इसलिए बाबा ने कहा टाइम लग सकता है लेकिन बदले नहीं, ये हो नहीं सकता। एक बार ऐसे एक था, एक दादी एक बार सुना रही थी कि ब्रह्मा बाबा एक पांडव भवन के पीछे एक स्थान झोपड़ी जिसमें एक महात्मा रहता था साधु, तो उसका काम ही धंधा था रोज कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलना। तो दो चार दिन से उसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ी, तो बाबा ने कहा वो बच्चा कहाँ है, आजकल फूलों की वर्षा नहीं कर रहा है। तो किसी ने कहा बाबा उसकी शायद तबीयत खराब है। तो कहा तबीयत खराब है तो आप लोगों ने उसको जाके कुछ पूछा, दवाई वगैरह देके आए? तो बच्चों ने कहा बाबा वो रात दिन गालियां देता है, उसको हम दवाई देने जाएं? तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, वो भी बाबा का बच्चा है, उसको जाके दवाई देके आओ और फल देके आओ। तो बच्चों ने दवाई लेकर के और फल लेकर के गए उसके पास, कहा कि बाबा ने आपके लिए फल और दवाइयां भेजी है। तो उस साधु के आंखों में आंसू आ गया कि जिसको हम रात दिन गालियां देते हैं, आज हमारी तबीयत खराब है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, वो हमारे लिए दवाई भेजा, वो हमारे लिए फल भेजा, और वो आकर के फिर बाबा के पैरों पर पड़ करके माफी मांगता है। तो ये होती है हमारी शुभ भावना, ये होती है हमारी उपकार की भावना। अच्छे के साथ तो अच्छा होकर के सब चलना जानते हैं, जिसके साथ आप आपका अच्छा बनता, आपका साथी है, सहयोगी है, मदद करता है, ये तो सारी दुनिया उसको मदद करती है। आपकी वो निंदा कर रहा है, ग्लानी कर रहा है, घृणा कर रहा है, नफरत कर रहा है, और उसके प्रति भी आप सहयोग की भावना रख रहे हैं, स्नेह की भावना रख रहे हैं, सद्भावना रख रहे हैं, तो ये है हमारे जीवन की महानता। हाँ, ये है बाप समान उदारता, परोपकार की भावना। और आगे बाबा ने क्या कहा? हाँ आगे आएगा, उसके पहले बाबा ने क्या कहा? बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है, प्यार। बाबा से प्यार माना बाबा की मुरली से प्यार, बाबा से प्यार माना बाबा के यज्ञ से प्यार, बाबा की सेवाओं से प्यार, बाबा से प्यार माना हाँ बाबा के बच्चों से स्नेह प्यार, ब्राह्मण परिवार से प्यार। हम कहें कि हमारा बाबा से बहुत प्यार है और बाकी इस ब्राह्मण परिवार में बड़ा ही खिटपिट है। अच्छा, हम ब्राह्मण परिवार को भी बहुत, ब्राह्मण परिवार भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन एक आत्मा, किसी को हम सर्टिफिकेट दे के रखते हैं, ये आत्मा, इससे तो भगवान बचाए, इसके मुख से हमेशा जहर ही निकलता है, पत्थर ही निकलता है, इससे तो दूर रहो। क्या क्या हम सर्टिफिकेट दे देते हैं, अब बताओ उसको किसने चुना? उसको भी तो बाबा ने चुना, उसके ऊपर भी तो बाबा की दृष्टि गई, उसको भी तो बाबा ने पसंद किया। हम कहते हैं हमें बाबा समान बनना है, अब बाबा को वो बहुत पसंद है, हमें पसंद नहीं आ रहा है, वो तो बनेंगे बाबा समान? तो जो बाबा को प्रिय, अब इसके ऊपर आप चिंतन करना, बाबा को क्या क्या पसंद है इसकी लिस्ट निकालना, फिर अपने से मिलाना, क्या वो मुझे भी पसंद है। हाँ, अपने को उसमें जोड़ना। जैसे बाबा को ये ड्रामा बहुत पसंद है, हम कोई सीन देख करके ये कहते हैं अरे ये बड़ा गलत हुआ, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बनेंगे बाबा समान? बाबा कहते ड्रामा का हर सीन बहुत बहुत कल्याणकारी है, बहुत अच्छा है, बाबा को बहुत पसंद आ रहा है, और हम कहते पसंद ही हमें पसंद ही नहीं आ रहा है, तो बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो इसके ऊपर चिंतन करके लिखना। और आगे बाबा ने क्या कहा? अच्छा, और धारणा सार में क्या कहा? जिन रोया तिन खोया, इसलिए कोई भी परिस्थिति आ जाए तुम्हें रोना, कोई कुछ भी बोले कहे, हाँ? लेकिन कई बार हमारे अंदर आता है कि कहां तक हम सहन करेंगे, कहां तक हम चुप रहेंगे। ये बार बार इसकी तो आदत पड़ जाएगी बोलने की, एक बार तो इसको मजा चखा ही देना चाहिए। है? चखाना चाहिए कि नहीं चखाना चाहिए? माताएं क्या बोलती हैं? रोज रोज इसकी तो आदत पड़ गई है बोलने की, एक बार इसको भी अच्छे से सुना दो, रोज का झंझट मिट जाएगा। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। अच्छा भाई क्या बोलते हैं? वो रोज रोज आपको बोल रहा है, तंग कर रहा है, एक बार उसको मजा चखाना चाहिए कि नहीं चखाना चाहिए? हैं? आप लोग बिल्कुल पक्के हैं। बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया कि देखिए बाबा ने कहा है आपने 10 बार सहन किया और 11वीं बार आपने उसको बोल दिया, आप लड़ाई झगड़ा कर लिया। अब देखने वाले बाहर जो देखने वाले वो क्या सोचेंगे? अरे ये तो ओम शांति में जाते हैं। ये तो शांति में, हम तो समझते थे बहुत शांति में रहते हैं, आज मुझे पता चला ये भी झगड़ा करते हैं क्या? तो ये क्या किया फिर हमने? तो क्या करना है? है ना, आप सोचो ना, आप उस समय ज्ञान के पॉइंट्स याद करो। हाँ, बाबा के महावाक्य, बच्चे तुम एक बार भी सहन करते हो तो मैं तुम्हें 100 गुना दुआएं देता हूं। बाबा के महावाक्य हैं ये। अब कोई आपको बोले तो समय क्या सोचना? अरे वाह, मुझे भगवान की 100 गुना दुआएं और बोल ले भाई। आपको पता नहीं मुझे क्या मिल रहा है। आपके अंदर से मुस्कुराहट आएगी और वो भी देख के हैरान हो जाएगा, मैं इसको बोल रहा हूँ ये मुस्कुरा रहा है। उसको बोल भी देना, आपको पता नहीं आप बोल रहे हो और मैं कितनी बड़ी प्राप्ति हमें हो रही है, हमें भगवान की 100 गुना दुआएं मिल रही है आपके एक बोल सुन करके। अच्छा वो बोल रहा है तो जरूर हमारा कोई हिसाब किताब है ना, तो क्या कर रहा है वो हिसाब किताब? अगर हमने भी बोल दिया तो हिसाब किताब चुप तो हुआ हमारा? फिर हिसाब किताब बना रहेगा, फिर हमें हिसाब किताब चुप तो करने कहां जाना पड़ेगा? तो उसने हमें कहां जाने से बचाया? तो उसका बोलना कितना कल्याणकारी हुआ। तो आप सोचो भाई, ये आप उसको और धन्यवाद करो, भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें धर्म राजपुरी जाने से बचा लिया, क्योंकि मैं भी कभी आपको बोला रहा हूंगा, हिसाब किताब हमारा रहा है ना, मैं तो भूल गया था लेकिन आपको याद रहा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे ऊपर आपने बहुत मेहरबानी की। तो क्या होगा? वही सहन करना बहुत अच्छा लगेगा, उसमें हमें है क्या बोल रहे हैं? अच्छा सहन सा, बहुत सारी पॉइंट्स है, अब इसके ऊपर आप और अच्छे अच्छे आप निकाल सकते हैं। सहन करने की आज्ञा किसने दी है, सहन करना, सहन सा बनना, सारी शक्तियां जमा करना, इसके ऊपर और चिंतन करना। आगे बढ़ते हैं, वरदान। आज का वरदान क्या था? हाँ आप तो जैसे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर दाता बन, क्या मास्टर दाता किसको कहेंगे? देना जानता है। और आज बाबा ने क्या कहा? हाँ? अपने साथियों को क्या बनाने वाले? स्नेही सहयोगी बनाने वाले, मास्टर दाता भव। लेकिन कैसे? स्वराज्य के द्वारा, स्वराज्य स्व के राज्य द्वारा, अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। दाता अर्थात राजा। तो बाबा ने कहा जैसे राजा होता है वो किसी से कुछ मांगता है क्या, लेकिन लोग देने वालों की उसके आगे हाँ, स्नेह की सौगात देने वालों की लाइन लगती है। तो बाबा ने कहा जैसे वैसे आप राजा बन करके रहेंगे, किनके राजा? अपने आप के राजा, अपने कर्मिंद्रियों के राजा। तो किसकी लाइन लगेगी आपके आगे? बाबा ने कहा चाहे लौकिक हो या अलौकिक, सब आपको स्नेह देंगे, सब आपको सम्मान देंगे, सब आपका कहना मानेंगे, लेकिन उसके लिए क्या बन करके रहना? खुद के राजा बन करके रहना है। तो सब के दिलों के ऊपर आप राज्य करेंगे। और स्लोगन क्या था?
हाँ? सब साधन प्राप्त होते हुए वृत्ति से उपराम रहने वाले ही बेहद के बाबा के महावाक्य साधन जो आप देखते हैं, जो आज नए नए साधन मिले हैं, ये ना आदि में थे और ना ही अंत में रहेंगे। ये बीच में ये थोड़ा सा समय संगम युग पर आपको बाबा ने सेवा के लिए दिया है, तो साधनों को अपना आधार नहीं बनाना है। साधन है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, तब बनेंगे बेहद के वैराग वृत्ति। बेहद के वैरागी अर्थात देह सहित, देह के सारे संबंध, पदार्थ, साधन, किसी में भी हमारी बुद्धि, जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई पड़ता है देखते हुए क्या समझे, आज है कल नहीं रहेगा, ये सब विनाशी है, ये सब दुखदाई है, ये सब खत्म होने वाली चीज है, इनसे हमें बुद्धि निकालना है, तब कहेंगे बेहद की वैराग वृत्ति। तो इस प्रकार से मुरली रिवीजन करने का ये उद्देश्य था कि आप अपने यहाँ जाने के पश्चात भी रोज मुरली के ऊपर चिंतन करें, मंथन करें, और कम से कम एक पॉइंट सारे दिन के लिए वो अवश्य ले लें, सारे दिन उसके ऊपर चलें, उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएं, जीवन में लाएं। तो हमारी यही शुभ भावना है कि आप सदा मास्टर दाता बन करके रहें, रहम दिल बने और बेहद के वैरागी बने, बाप समान सबको सुख देते रहें, सुखदाता बन करके रहें। इन्हीं शुभ भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद, ओम शांति।